दो तीन महीने बाद पार्लियामेंट के चुनाव होने वाले हैं, तो राहुल गांधी यात्रा में बिजी हो जाएंगे बजाय चुनाव की रैलियां करने में, क्या असर नहीं पड़ेगा चुनाव में? राजीव गांधी को भी इस तरह यात्रा तो नहीं कहूंगा, लेकिन इस तरह घूमने का, लोगों से मिलने का इतना ही शौक था क्या?
मैं बताऊं आपको एक दफा की, जब उनके हाथ में खून बह रहा था
उस समय राजीव गांधी का चेहरा क्या था, चेहरा के भाव क्या थे राजीव गांधी? आपको क्या लगता है कि जो अमेठी इतनी दीवानगी के तहत, इतनी दीवानगी से गांधी परिवार को प्यार करती है, उसमें राहुल गांधी कैसे हार गए? आपका प्रश्न जो है वो ईवीएम की तरफ जाकर रुकता है,
बन सकता है?
आप भी जानते हैं कि चुनाव आयोग आपकी बात नहीं मानेगा, कांग्रेस की बात क्यों मानेगा? वो
वोटर की बात मानिए,
चुनाव आयोग सिर्फ एक आदमी की बात मानते हैं जिनका नाम नरेंद्र दामोदर दास मोदी है। नमस्कार, मैं संजय शर्मा, आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। सैम पित्रोदा साहब का नाम आप सबने सुना ही होगा, शायद ही कोई मेरा दर्शक होगा जो सैम पित्रोदा को ना जानता हो। मैं और आप जिस माध्यम से बात कर रहे हैं, ये टेलीफोन, ये इंटरनेट, भारत में लाने वाले वो शख्स थे, संचार क्रांति का उनको जनक माना जाता है, ना जाने पद्मश्री क्या क्या अवार्ड, 80 से ज़्यादा डॉक्टरेट करी हैं, दुनिया के कोने कोने में उनकी पहचान है, अमेरिका में सेटल्ड हैं, शिकागो में रहते हैं, और एक ऐसा इंटेलेक्चुअल इंसान जिसको पूरी दुनिया बहुत सराहती है। सैम पित्रोदा साहब से मैंने पिछली बार जब इंटरव्यू किया था तो उन्होंने कहा कि मैं ईश्वर को नहीं मानता, मेरी पत्नी मानती है, तो हम दोनों की विचारधारा अलग अलग है, घर में मंदिर है, पत्नी पूजा करती है, मैं पूजा नहीं करता। उन्होंने ये भी कहा कि मेरे लिए बड़ी हैरानी की बात है कि देश का भारत के प्रधानमंत्री हर समय मंदिर में घूमते रहते हैं, उनको लोगों की बात करने के लिए चुना गया, ना कि मंदिर मंदिर घूमने की। बात 100% सच थी, सरकारों का काम मंदिर बनाना नहीं होता है, प्रधानमंत्री का काम मंदिर मंदिर घूमना नहीं होता है, प्रधानमंत्री का काम होता है कि देश का संपूर्ण विकास हो, देश के 80 करोड़ लोगों को सिर्फ दो वक्त का राशन ना दे दिया जाए, उन 80 करोड़ लोगों को उनकी जिंदगी जीने के साधन उपलब्ध कराए जाएं। प्रधानमंत्री का काम यह नहीं होता कि पूंजीपति और पूंजीपति होता जाए, गरीब और गरीब होता जाए, और जब और गरीब हो जाए तो उसको 5 किलो राशन पकड़ा दो। इन सब बातों पे बात करी, और मेरे इंटरव्यू के अगले दिन ही मेरी ही बातों पे जो सैम साहब की हुई, भारतीय जनता पार्टी ने हमला बोल दिया, गोदी मीडिया के चैनल आधे आधे घंटे के प्रोग्राम करने लगे, सुधीर चौधरी, अंजना ओम कश्यप जैसे लोग इस बात पे प्रोग्राम करने लगे कि सैम पित्रोदा ने ये क्या कह दिया। तो मेरे उस इंटरव्यू के बाद पूरी दुनिया में इस बात की चर्चा हुई कि सैम पित्रोदा ने क्यों बोला, कैसे बोला, और छोटी सी बात को लेकर गोदी मीडिया ने बहुत बड़ा तूल पकड़ा दिया। मैंने फिर सैम पित्रोदा साहब से बात करी, राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू हो रही है, इस यात्रा के विभिन्न पहलुओं में बात करी, और जो कि सैम पित्रोदा एक ऐसे इंसान है जो राजीव गांधी के दोस्त थे और राहुल गांधी के एक तरह से गार्जियन भी मैं कह सकता हूँ, कि राहुल गांधी उनको बहुत मानते हैं, जब भी विदेश आते हैं तो राहुल गांधी की यात्रा का पूरा प्रोग्राम सैम पित्रोदा साहब मैनेज करते हैं, प्लान करते हैं कि क्या क्या करना चाहिए। इस इंटरव्यू में उन्होंने राजीव गांधी को लेकर बहुत बड़ा खुलासे किए और ऐसी बातें कही हैं जो मेरे मन को छू गई है, तो मैं लेके चलता हूं आपको सैम साहब के पास, सुनवाता हूं जो उन्होंने मुझसे कहा, और आपसे उम्मीद करता हूं चैनल को ज्वाइन करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, अपनी राय से जरूर अवगत कराएंगे। चलते हैं सैम साहब के पास। शुक्रिया सैम साहब आपका, और आप इस, मैंने आपको कष्ट इसलिए दिया आज क्योंकि राहुल गांधी की एक बार फिर वो ऐतिहासिक भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू हो रही है, और जो भारत जोड़ो यात्रा पार्ट वन था, मैं उसको भारत जोड़ो यात्रा कहूँगा इन दोनों यात्राओं को, उसने काफ़ी ऐतिहासिक उपलब्धियाँ हासिल करी, और राहुल गांधी की पर्सनालिटी में भी निखार आया, और हमने आपसे पहले भी चर्चा की थी उन यात्राओं की और राहुल गांधी की पर्सनालिटी की। ये यात्रा मणिपुर से शुरू हो रही है और मणिपुर एक खास महत्व रखता है, खास महत्व इसलिए रखता है कि ये पहली बार हुआ कि देश का एक राज लगातार जलता रहा, वहाँ सैकड़ों लोगों की हत्याएँ हो गई, महिलाओं के कपड़े उतार के उनका परेड किया गया, उनको प्रदर्शन किया गया, भीड़ ने उनको दौड़ाया और बहुत उनके शरीर के संग छेड़खानी करी, लेकिन अफसोस कि हमारे प्राइम मिनिस्टर वहां गए नहीं। तो राहुल गांधी शायद मणिपुर से एक बड़ा संदेश देना चाहते हैं, क्या लगता है कि इस बार जो ये राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा प्लान्ड हुई है, इसका मुख्य मकसद क्या है, क्योंकि आप उस फैमिली के बहुत करीबी हैं, राहुल जी के भी बहुत करीबी हैं, क्या मकसद को लेकर ये यात्रा शुरू कर रहे हैं?
कांग्रेस पार्टी ने उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, इंक्लूडिंग प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस पार्टी खड़गे साहब, हैज रियली आर्टिकुलेटेड वेल कि ये यात्रा क्यों ली जा रही है, कैसे ली जाएगी और उसका मतलब क्या है। जब पहली यात्रा नॉर्थ से साउथ और साउथ से नॉर्थ हुई, तभी सब लोगों ने बताया कि ऐसी यात्रा इस से वेस्ट होनी चाहिए। तो ये जो यात्रा है, इट इज टू मीट दैट डिमांड। लोग मांग रहे हैं, लोग कह रहे हैं राहुल जी को कि आप ये यात्रा शुरू करिए, जिससे आप बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स में कांग्रेस पार्टी के लोगों को मोटिवेट करेंगे, जन जनता को मोटिवेट करेंगे और इससे यू विल बी एबल टू बाईपास द गोदी मीडिया एंड रियली रीच डायरेक्टली टू पीपल। सो आपने जो देखा होगा उसका नक्शा, उसमें आप समझेंगे कि बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट कवर किए जा रहे हैं, वो एक सीधा रास्ता नहीं है, ये ऊपर नीचे सब जगह होके जा रहा है। बड़ी लंबी यात्रा है जो बस में और वाहनों में की जाएगी बहुत सारी, लेकिन मेन मैसेज वही है। इस वक्त मैसेज न्याय का है, एक है भारत जोड़ो और दूसरा है भारत में अन्याय हो रहा है, डेमोक्रेसी से अन्याय हो रहा है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से अन्याय हो रहा है, लोगों को अन्याय लग रहा है क्योंकि पीपल आर बीइंग डिवाइडेड। और ये अन्याय अब नहीं चलेगा, वो एक बड़ा मैसेज है।
आपको लगता है सैम साहब कि इस समय जब चुनाव का दौर चल रहा है, 2-3 महीने बाद पार्लियामेंट के चुनाव होने वाले हैं, तो राहुल गांधी यात्रा में बिजी हो जाएंगे बजाय चुनाव की रैलियां करने में, क्या असर नहीं पड़ेगा चुनाव में?
दोनों एक ही चीज है, क्योंकि दोनों चीज में आप पब्लिक से मिलते हैं, वर्कर से मिलते हैं। इसमें क्या होगा कि आप पूरे देश को कवर कर सकेंगे ईस्ट टू वेस्ट, और थोड़ा ब्रेक भी ले सकेंगे, कभी जरूर पड़ी चुनाव में कहीं जाने के लिए तो आप ब्रेक ले सकते हैं, चुनाव के लिए कहीं जाना पड़ा तो आप वहां भी जा सकते हैं, तो फ्लेक्सिबिलिटी तो है ही ना।
हाँ, ये तो है सीएम साहब। ये बताइए, आप उनके राहुल जी के पिताजी के भी दोस्त रहे, राजीव गांधी को भी इस तरह यात्रा तो नहीं कहूंगा लेकिन इस तरह घूमने का, लोगों से मिलने का इतना ही शौक था क्या?
बिल्कुल, मैं बताऊं आपको एक दफा कि हम रात को राहुल गांधी से मिले, राजीव गांधी से मिले, तब उनके हाथ में खून बह रहा था। मैं और मेरी वाइफ गए थे रात को बात करने, तो मैंने पूछा क्या हुआ, तो हमें बहुत अचरज लगा जब उन्होंने जवाब दिया। उन्होंने बोला, सैम आज हमने करीबन करीब 5,000 लोगों से हाथ मिलाया।
माय गॉड,
जहां भी मैं गया लोग हाथ मिलाते हैं, और ये सब लोग गांव के लोग हैं, खेती पानी में लगे पड़े हैं, उनके हाथ बड़े रफ होते हैं। ओके, अब हमारा हाथ है वो उतना रफ नहीं हो सकता, क्योंकि हम तो लिखते हैं, कुहाड़ी लेके काम नहीं करते। हमारे ग्रैंड पेरेंट्स थे, उनके हाथ बड़े रफ थे। हमारे एक चाचा तो ऐसे थे जो लुहार का काम करते थे, जो पुड़ियां बनाते थे तब गर्म तेल में उंगली डाल के निकालते थे पुड़ियां, इतनी रफ उनकी उंगली थी। तो राजीव गांधी ने बताया कि ये सब के साथ हाथ मिलाने से ये रफ हो गया है, तो वो भी बहुत लोगों को मिलते थे।
तो ऐसे 5,000 लोगों से हाथ मिलाते रहे और हाथ ऐसा हो गया कि खून निकलने लगा राजीव गांधी के,
तो भी चलता था,
तब भी वो लोग हाथ से मिलाते रहे, तब
क्या करो, क्योंकि इतना बड़ा क्राउड है, लोग मिलते हैं आपको, बोला यू नो हाथ मिलाना है उनको, यू कांट से कि हमारा हाथ दुख रहा है। ये बातें
ये सैम साहब आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात बताई आपने, जिस समय राजीव गांधी ने ये बात बताई आपको, किसी भी इंसान के हाथ से अगर खून निकल रहा, दर्द हो रहा होगा, उस समय राजीव गांधी का चेहरा क्या था, चेहरा के भाव क्या थे राजीव गांधी?
बिल्कुल आनंद से थे कि ये मेरी ड्यूटी है, ये मेरा काम है और मुझे उनसे मिलके बहुत अच्छा लगा।
और ये तब की बात है जब वो प्राइम मिनिस्टर थे?
एब्सोल्युटली।
अच्छा, प्रधानमंत्री होने के बावजूद भी वो इतने लोगों से मिलते थे?
बिल्कुल, हमारे साथ आए थे वो अमेठी में, हम गए थे उनके साथ रादर, तो आगे चल रहे थे, कभी कभी अब उनके साथ थे, कभी कभी दूसरी गाड़ी में थे। द क्राउड एवरीवेयर वॉज ओवरवेलमिंग। अमेठी की जनता लव्ड राजीव गांधी, दैट वॉज हिज बैकयार्ड, एंड जहां जहां गए वहां वहां वो लोगों से मिलते रहे, हाथ मिलाते रहे, सिक्योरिटी वाले भी साथ होते थे। सो वो जमाना अलग था।
सैम साहब, मजे की बात यह कि अभी मैं लगभग कुछ समय पहले अमेठी गया, तो मैं गांव में गया, तो उस गांव में एक झोपड़ी नुमा एक बना रही थी, कुछ बेंचें थी, अब तो उन्होंने खेलने का मैदान बना दिया। तो वो जो प्रधान थे, मुझे उन्होंने उस झोपड़ी की जो उन्होंने शेप बनाई थी उसमें कुछ बेंच डाला कि उन्होंने मुझसे कहा कि यहाँ पे गांधी परिवार के सभी लोग, राहुल गांधी भी आए हैं, राजीव गांधी भी आए हैं। और फिर उन्होंने मुझसे कहा उस प्रधान ने कि एक बार सैम पित्रोदा और राजीव गांधी दोनों दर से निकल रहे थे, गाड़ी रखवाई, तो आपका नाम उसकी दूसरी पीढ़ी थी उसको भी याद था कि अमेठी के इन गांव में राजीव गांधी और सैम पित्रोदा, बल्कि वो कुछ फोन का जिक्र कर रहे थे कि उस समय फोन आया नहीं था, हम जानते नहीं थे फोन। तो सैम पित्रोदा जी ने कहा कि कुछ दिनों बाद तुम अमेठी के लोग यहाँ बैठ के रिजर्वेशन करा लिया करोगे टिकट का, तो बड़े हैरान थे वो। ऐसा कुछ वाक्य याद आ रहा है आपको अमेठी में? ऐसे वाक्य
हम उनके साथ अमेठी गए थे और बहुत घूमे उनके साथ, और राजीव कभी कभी खुद ड्राइव करते थे तो अलग रास्ता भी ले लेते थे खुद का, जो प्लान नहीं था टूर में। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ओके। तो बहुत सारे गांव घूमे उनके साथ। फिर एक दफा हम राहुल के साथ भी गए थे अमेठी।
अच्छा।
हाँ, उनके साथ भी हमने 2-3 दिन वो एरिया में घूमे उनके साथ। इनॉग्रेशन उन्होंने किया था 2-3 चीज़ों का, हम भी उनके साथ थे। कंप्यूटर का इनॉग्रेशन किया था, एक तालाब का इनॉग्रेशन किया था। सो अमेठी हैज़ बीन ए वेरी डियर टू गांधी फैमिली। और जब लास्ट इलेक्शन में 2019 में अमेठी में हार गए, वो मुझे ठीक नहीं लगा। तब से मैं कह रहा हूं कि कुछ गड़बड़ है।
अच्छा सैम साहब, इसी मुद्दे पे आता हूं, आपको क्या लगता है कि जो अमेठी इतनी दीवानगी के तहत, इतनी दीवानगी से गांधी परिवार को प्यार करती है, उसमें राहुल गांधी कैसे हार गए?
वो तो मैं भी वही पूछ रहा हूं, इट इज नॉट पॉसिबल। अब मेरे पास जवाब नहीं है,
लेकिन आपका इशारा ईवीएम की तरफ है।
प्रश्न है, ओके, जवाब नहीं है।
आपका प्रश्न जो है वो ईवीएम की तरफ जाकर रुकता है,
बन सकता है।
सुप्रीम कोर्ट के कुछ वकील दिल्ली में बहुत बड़ा प्रदर्शन कर रहे हैं, ईवीएम को लेकर आए हैं, एक वीवीपैट बनाया है, और वो दिखा रहे हैं कि ईवीएम किस तरह हैक हो सकती है, वीवीपैट किस तरह कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। क्योंकि आप तकनीकी के मास्टर हैं, टेक्नोलॉजी के आप जाने जाते हैं, टेक्नोक्रेट आप ऐसे हैं जिसने इस देश में संचार क्रांति के जनक माना जाता है। तो आज जो बात आप मुझसे आपने 2 महीने पहले कही थी, अब वो बात थोड़ा और आगे बढ़ गई है। सुप्रीम कोर्ट के वकील प्रदर्शन कर रहे हैं, तो जो आप बात कह रहे थे अमेठी की, राहुल गांधी की हार के तार भी उसी से जुड़ रहे हैं कि कुछ मशीनें सेट की गई?
पता नहीं, हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है। हमें प्रश्न है। अब ये जो सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने काम हाथ में लिया है ईवीएम का, ये हमें बता रहा है कि नाउ वोटर इज कंसर्न। ये जो ईवीएम का इश्यू है वो पॉलिटिकल नहीं है, इनडायरेक्टली पॉलिटिकल है, लेकिन डायरेक्टली वो इश्यू है सिटीजन का। अल्टीमेटली नागरिक की वजह से हमें देखना है कि हमारा वोट जहां कास्ट करते हैं वहीं काउंट होता है कि नहीं। ये इश्यू प्रजा का है, प्रजातंत्र में पॉलिटिकल नहीं है। उसके बाद वो पॉलिटिकल बन जाएगा, लेकिन जब तक लोग आगे नहीं आएंगे तब तक ये इश्यू नेशनल इश्यू नहीं बनेगा। क्योंकि ऐसे तो बोलते हैं लोग कि भी आप पार्टी वाले, आप जीते कल हारे, क्यों ऐसा कर रहे हैं, जब जीत गए थे तब नहीं बोलते, हार गए तब बोलते हैं। इट हैज नथिंग टू डू विद दैट। इट हैज टू डू विद माय वोट। आर यू काउंटिंग एज कास्टेड? आई एम नॉट श्योर। ये जो डाउट है लोगों के मन में, वो डाउट आपको निकालना है। अभी देखिए, हमने पढ़ा जो इलेक्शन कमीशन ने रिस्पांस दिया है जयराम रमेश की रिक्वेस्ट का, वो 9 पेज का रिस्पांस है, हमने पढ़ा। वो गोल 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 है, वो सीधी बात नहीं करते कि भाई आपने अपॉइंटमेंट मांगी थी, ये आपकी अपॉइंटमेंट है, आइए मिलते हैं बात करते हैं। अब जब भी आप से बात होती है आप गोल गोल कहते हैं कि ये वी मशीन है, ये वी पैड ऐसा है, ये डिवीजन है, ये डोंट कंफ्यूज। इश्यू बड़ा सिंपल है। आप जो रिसीट मुझे बताते हैं वो मेरे हाथ में चाहिए एज ए वोटर। मुझे दिखाइए मत 7 सेकंड के लिए और फिर आपको जो करना हो वो करिए। दूसरा, वो रिसीट मुझे एक डब्बे में डालने दीजिए जो डब्बा किसी से कनेक्टेड ना हो, और फिर उसको भी काउंट करिए। ये कोई बड़ी चीज है नहीं। गोल गोल क्यों कर रहे हैं आप? सादी बात है, ठीक है, आप लगाइए आपका वीवीपैड, आप लगाइए आपका कंट्रोलर, माइक्रो कंट्रोलर, आप लगाइए वो सब, लेकिन हमें तो चाहिए रिसीट दैट आई कैन वेरीफाई and put it in a box that should be counted all the time, not once in a while. So 3 din jyada lage to lage, koi farak nahi padta. Okay.
Lekin Sam sahab, aap bhi jante hain ki chunav aayog aapki baat nahi manega, Congress ki baat kyon manega wo? To fir Congress ko lekar bada aandolan kyon nahi khada kar rahi Congress?
Voter ki baat maniye, ye Congress ki baat nahi hai.
To voter ki baat bhi wo kyon manega? चुनाव आयुक्त, आपको भी पता है चुनाव आयुक्त सिर्फ एक आदमी की बात मानते हैं जिनका नाम नरेंद्र दामोदर दास मोदी है।
चुनाव, किसी दूसरे की बात नहीं। चुनाव आयोग इज एन इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन।
आपको लगता है?
नहीं, क्रिएटेड बाय पार्लियामेंट, दे मे नॉट एक्ट अकॉर्डिंगली बट दे आर सपोज टू बी इंडिपेंडेंट, दे आर सपोज टू बी लुकिंग एट द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल एंड आई थिंक दे विल एट द एंड।
पित्रोदा साहब, कर्नाटक के चुनाव में वो बजरंगबली का नाम प्राइम मिनिस्टर ले रहे हैं, बजरंगबली का नाम लेके वोट डालना, ये एक प्राइम मिनिस्टर देश के कह रहे हैं। राजस्थान के चुनाव में एक दर्जी की हत्या का फोटो स्केच बना के गर्दन काट रहा है, उसके बड़े बड़े सीरियस और सिंसियर मिनिस्टर और नेता लोग कार्टून को ट्वीट कर रहे हैं, और चुनाव आयोग को कुछ दिख नहीं रहा है। तब भी आप क्या मानते हैं ये चुनाव आयोग ऐसा है जो आपकी बात को सुनेगा? उसको एक ही बात समझ में आती है, हमारा मालिक कौन है, और मालिक की बात के अलावा वो किसी दूसरे की बात ही सुनता? आप भी जानते हैं एक बड़ा आंदोलन नहीं खड़ा करेगी कांग्रेस और विपक्ष, तो चुनाव आयोग तो ऐसे ही करेगा कि आपको लड़ना लड़िए, नहीं लड़ना मत लड़िए।
अगेन मैं कह रहा हूं कि ये चीज और ये आंदोलन कांग्रेस और विपक्ष का नहीं है, का ही नहीं है, ये आंदोलन पब्लिक का है, वोटर का है, सिटीजन का है। इलेक्शन कमीशन विल अल्टीमेटली हैव टू रिस्पॉन्ड टू द पीपल ऑफ इंडिया एंड नॉट जस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और ए पॉलिटिकल पार्टी ऑफ इंडिया। इंडिया इज टू बिग एंड दिस इज द रीजन पीपल लाइक अस फील दैट डेमोक्रेसी हैज बीन हाईजैक्ड। when we get decisions which are not in the interest of the public, we worry. I was talking to a friend again a few days ago about voluntary agencies. Kya ho raha hai civil society ka? How much pressure they are under? And that tells me that democracy is under stress. Log ghabraye hue hain sab jagah. Log bolte nahi, hame kehte hain ek, lekin hamara naam mat dena. Phir wo kehte hain baad mein ki bhai kisi ko batana mat ki humne ye aapko kaha tha. Khul ke baat karne wale bahut kam log hain. Aur democracy mein khul ke baat karne wale log chahiye, aapke jaise patrakar chahiye jo khol ke baat kar sake. Aur shayad humne kuch galat bhi bol diya to theek hai, maafi mangte hain. हमें ऐसा कुछ नहीं है. आई हैव नथिंग अगेंस्ट एनी बडी, मैं ये बताऊं आपको, एंड आई मीन दैट, बट आई हैव इश्यूज अगेंस्ट द प्रोसेस, अगेंस्ट द सिस्टम.
सैम साहब, पिछले दिनों मेरे साथ ही बात करते हुए आपने एक लाइन कह दी थी कि आप भगवान को नहीं मानते, पत्नी मानती हैं, अपनी अपनी आस्थाएं हैं. मैं अगले दिन देख रहा था पूरी भारतीय जनता पार्टी आप पे हमला बरती, वो इंटरव्यू आप मेरे साथ
ये, ये कैसी बात है ये? जो भी कहे हम, आपको अच्छा ना लगे तो ठीक है, ओके, लेकिन सिस्टमैटिकली ऑर्केस्ट्रेटेड अटैक इज नॉट गुड फॉर डेमोक्रेसी. किसी ने बोल दिया ठीक है, ओके, अब हम तो दिल खोल के बोलते हैं, हम मैनिपुलेट करके नहीं बोलते कि ये कहेंगे तो इसको कैसा लगेगा, वो कहेंगे तो इसको कैसा लगेगा, बिकॉज दैट इज नॉट ए गुड कॉन्वर्सेशन. आपके दिल से जो बात निकलती है वही सच बात होती है. आपको किसी ने प्रॉम्प्ट किया, किसी ने लिख के दिया, ऐसा बोलिए, ऐसा मत कहिए, दैट्स नॉट फेयर. Okay, in democracy, you need to be able to speak up openly. Okay, हमारा कोई मतलब नहीं है किसी को हर्ट करने का. That is not my goal in life, भैया. Okay, but it is my duty to speak my mind. And I don't have all the answers. I am not an expert on everything. But I had a long journey. I am a product of British Raj. Product of independent India, product of Indian education, product of, you know, poor Indian family who got an opportunity. So of course I have right to speak, and of course I will speak. Okay. So democracy is all about open dialogue, fair conversation, honest conversation, and not about orchestrated attack on individuals. ऐसा होता रहता है.
आई एग्री. सैम साहब, एक जिक्र और करना चाहूंगा, आप गुजरात से आते हैं. गुजरात में जब दंगे हुए थे उस समय 21 साल की एक लड़की थी, बिल्किश बानो, उसके परिवार की हत्या कर दी गई थी, उसके संग सामूहिक बलात्कार किया गया था, उसकी बच्ची की उसके सामने हत्या कर दी गई थी. जो हत्यारे थे, जो बलात्कारी थे, वो जेल चले गए थे, लेकिन 15 अगस्त के दिन गुजरात सरकार ने उनको माफ कर दिया था, रिहा कर दिया था. और जब रिहा हुए तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने उनकी माला पहनाई, उनको मिठाई खिलाई, और देश के मिनिस्टर्स ने, एमपी ने कहा कि वो तो संस्कारी ब्राह्मण हैं, गलत तरीके से फंसा दिया गया. आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गुजरात ने ये गलत किया, और उन सबको दोबारा 2 हफ्ते में हाजिर होने का आदेश किया, बाकी उम्र उनको जेल में काटनी पड़ेगी. ये पूरी घटनाक्रम आपको क्या लगता है, क्या पूरे, चूंकि बिल्किश बानो एक इंटरनेशनल चर्चा का विषय बन गई थी कि भारत में न्याय होता है या नहीं होता है, आज के फैसले से दुनिया भर में क्या संदेश आ गया होगा?
हम तो लीगल बहुत जानते नहीं हैं, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा उसका हम आदर करते हैं. सुप्रीम कोर्ट ने सोच विचार के ये डिसीजन लिया होगा, और हम सुप्रीम कोर्ट से यही आशा रखते हैं कि वो इंडिपेंडेंट हो, गवर्नमेंट प्रेशर में दब मत जाएं। ये एक इश्यू है, ऐसे बहुत सारे इश्यू देश में हैं अभी, ये तो एक ही इश्यू है, ऐसे एटलीस्ट 10 लार्ज इश्यूज आर देयर इन द कंट्री विच रिक्वायर सुप्रीम कोर्ट टू स्टैंड अप एंड टेल पीपल वी आर इंडिपेंडेंट, वी विल डू व्हाट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड पीपल ऑफ इंडिया। इफ दिस इज what Supreme Court has done, I welcome the decision and I hope Supreme Court then goes back and looks at several other issues like this to put things back on track. People have lost trust in our institutions and this is a step to rebuild trust. इसलिए जो सच है उसे आगे लाना है, वो सुप्रीम कोर्ट का काम है। एंड आई कॉम्प्लीमेंट देम फॉर टेकिंग द इनिशिएटिव, वट एवर वे इट इज, वट एवर द लीगल इश्यूज आर, आई एम नॉट क्वालिफाइड।
ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। एक आखिरी सवाल, आप इंडियन ओवरसीज कांग्रेस में अध्यक्ष हैं, पूरी दुनिया में आपके लोग हैं, राहुल गांधी की इस यात्रा को पूरी दुनिया में जो भारतीय हैं, जो इंडियन ओवरसीज हैं, चूंकि पूरी दुनिया के अलग अलग देशों में, वो किस तरह से देखते हैं?
वो बहुत एक्साइटेड हैं, हमारे पे रोज फोन कॉल आते हैं, उनको भी जाना है यात्रा में, उनको भी उनके साथ चलना है थोड़ा बहुत। लोग हमें ऑस्ट्रेलिया से, न्यूजीलैंड से, यूरोप में से, अमेरिका, कैनेडा, सब जगह से फोन करते हैं कि कब हम जाएं। सो हमारे सेक्रेटरी है वहाँ पे डॉक्टर आरती कृष्णन, शी इज़ अ सेक्रेटरी ऑफ AICC इन चार्ज ऑफ इंडियन ओवरसीज कांग्रेस, बहुत ही कैपेबल पर्सन है। उनसे भी लोग कॉल करते हैं सब देश से और वो कोऑर्डिनेट करेंगे इन लोगों की विजिट। बहुत सारे लोग जाएंगे, पहली यात्रा में भी बहुत NRIs or NRI leaders had gone. People from South Korea had gone, people from America had gone, and people from, you know, UK had gone. So I'm hopeful that many Indian Overseas Congress leaders will go there.
बहुत बहुत शुक्रिया सैम साहब, आपने अपना इतना कीमती समय दिया, धन्यवाद, आभार। तो ये थे सैम पित्रोदा जी, आपने सुना उनकी बात और कितना मार्मिक बात कही कि राजीव गांधी के हाथ से खून टपक रहा था क्योंकि वो हजारों लोगों से हाथ मिलाए थे। ये देश के प्रधानमंत्री थे, एक हमारे प्रधानमंत्री हैं, बच्चों से मिलते हैं तो भी कटीले तार बीच में लग जाते हैं, कोई बच्चा उनके महंगे कपड़े ना छू ले। ये वक्त वक्त की बात और इंसान इंसान की बात है। मुझे आपकी राय का इंतजार रहेगा, चैनल को ज्वाइन जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, अपना प्यार बनाए रखिएगा। शुक्रिया, थैंक यू।